डॉक्टर डेविड टर्नर, गॉस्पेल ऑफ जॉन, 17:16। यूहन्ना 13:33 से 14:31। 2024 डेविड टर्नर और टेड हिल्डेब्रांट। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह 17:16 है, विदाई प्रवचन, एक नई आज्ञा और एक अन्य सहायक। यूहन्ना 13:31 से 14:31। हम जॉन 13 से 17 में यीशु के विदाई प्रवचन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ समय यह समझने की कोशिश में बिताया है कि यीशु ने अपने शिष्यों पर पैर धोने का काम तत्काल संदर्भ में किया था और यह बाकी का परिचय कैसे देता है प्रवचन, और आज हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जाहिरा तौर पर शिष्यों को अपने दिमागों को सही जगह पर रखने की आवश्यकता थी ताकि उनके लिए विनम्रता का एक उदाहरण स्थापित किया जा सके और साथ ही जिस तरह से यीशु का मुक्ति कार्य उन्हें पापों से शुद्ध करेगा, और यह निश्चित रूप से उन्हें तैयार करने का एक उचित तरीका था। उसकी शिक्षा प्राप्त करें। केवल जब हमारा मन मसीह की समानता और विनम्रता और दूसरों की सेवा पर केंद्रित होता है, तभी हम धर्म ग्रंथों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए उचित स्थान पर होते हैं। इसलिए यीशु ने शिष्यों के पैर धोए, उन्हें एक आदर्श दिया कि उन्हें एक दूसरे के लिए वैसा ही करना चाहिए जैसा उसने उनके लिए किया है, और फिर विश्वासघाती यहूदा के चले जाने और रात होने के बाद उसने उन्हें शिक्षा देना शुरू किया। इसलिए जैसे ही दुनिया पर रात का सन्नाटा छा गया, यीशु दुनिया की रोशनी के रूप में शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं और उनके जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका जीवन कैसा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जॉन 13 के शेष भाग की ओर बढ़े और इस वीडियो में जॉन 14 पर भी चर्चा करें। इसलिए जैसा कि हमने अतीत में किया है, हम फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले केवल परिच्छेद का कथात्मक प्रवाह और यह हमारे सामने कैसे प्रकट होता है। तो मेरे साथ ध्यान दें कि जैसे ही यहूदा चला गया और रात हो गई, यीशु ने तुरंत शिष्यों को यह सिखाना शुरू कर दिया कि उनके और पिता के बीच यह पारस्परिक महिमा कैसे चल रही है, और यही नई आज्ञा का आधार है। इसलिए हम श्लोक 31 से 35 में नई आज्ञा के बारे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। नई आज्ञा की प्रस्तावना के रूप में यीशु ने जो कहा है, उससे पीटर को समस्या है, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं जा रहा हूं और तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। पीटर को यह पसंद नहीं है, वह इसे नहीं समझता, वह यीशु के साथ जाना चाहता है। इसलिए उन्होंने यीशु के साथ छंदों में थोड़ा विचार विमर्श किया। यहां अध्याय 13 के अंत में अध्याय 14 की शुरुआत में पहले कुछ छंद शामिल हैं। यह अध्याय 14 की शुरुआत में छंदों की सेटिंग है, जहां यीशु उन्हें प्राप्त करने के लिए शिष्यों के पास फिर से आने के बारे में बात करते हैं। यह संभवतः जॉन 14 में सबसे कठिन मार्ग है, कम से कम इसके बारे में मेरे सोचने के तरीके से। और क्या यीशु किसी ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जो वह सुदूर भविष्य में करेंगे, एस्केटन, या क्या वह व्यक्तिगत रूप से अपने आगमन के बारे में बोल रहे हैं आत्मा का, या चाहे वह बस कह रहा हो मैं पुनरुत्थान के बाद वापस आऊंगा। तो हम वापस आएंगे और जॉन 14 के पहले कुछ छंदों पर काफी विचार विमर्श करेंगे। इस बिंदु पर थॉमस ने यीशु से रास्ते के बारे में पूछा। तो हमारे पास वह सुप्रसिद्ध पाठ का मार्गदर्शक है जहां यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस समय फिलिप चीजों के बारे में भी जानना चाहता है, वह तो सिर्फ बाप को देखना चाहता है। तो यीशु फिलिप को समझाते हैं कि यदि उसने अनुभव किया है और यीशु से संबंधित है, तो उसका पिता के साथ एक रिश्ता है, उसने बाप को देखा है। वह इस खंड में आत्मा के आगमन के बारे में पहली बार बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसका मुद्दा यह होगा कि व्यक्ति को पिता का अनुभव होगा और उसे पिता दिखाया जाएगा, न केवल यीशु द्वारा बल्कि आत्मा के माध्यम से यीशु की निरंतर उपस्थिति से। इसलिए उन्होंने यीशु के माध्यम से पिता को जाना है और वे उस आत्मा के माध्यम से पिता को जानते रहेंगे जिसे यीशु और पिता भेजेंगे। अंत में यहूदा एक प्रश्न पूछता है। वह जुडास इस्करियोती नहीं है, बल्कि प्रेरितिक मंडली में एक अलग जुडास है। यहूदा जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि यीशु खुद को केवल शिष्यों के सामने दिखाने की बात कर रहा है, न कि पूरी दुनिया के सामने। मुझे लगता है कि इसका संबंध यहूदा की इस समझ से है कि मसीहा कैसा होगा, मसीहा कैसे काम करेगा और एक बड़ा रुतबा संचालित नेता, एक सैन्य सरकारी नेता मूल रूप से दुनिया पर कब्जा करेगा। यहूदा उसी की तलाश में था और इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि यीशु भविष्य के बारे में क्यों बात कर रहा था जहां वह केवल अपने आप को शिष्यों को दिखाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद के पाठ यह समझा रहे हैं कि यीशु ऐसा क्यों कर रहे हैं और वह कम से कम तुरंत ही वह सामाजिक राजनीतिक मसीहा क्यों नहीं बनने जा रहे हैं। तो अध्याय यीशु द्वारा शिष्यों को एक अलग स्थान पर ले जाने के साथ समाप्त होता है। वह कहता है, आओ चलें, कहीं और चलें, जो फिर बेल और शाखाओं के बारे में कथा, वहां की आलंकारिक कथा के साथ सीधे अध्याय 15 में चला जाता है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद इसका मतलब यह है कि यीशु उस समय एक अंगूर के बगीचे से गुजर रहे थे और वह उसी के आधार पर शिक्षा दे रहे थे। उस समय जेरूसलम क्षेत्र की स्थलाकृति और सामाजिक इतिहास को देखते हुए मुझे यकीन नहीं है कि यह वैध है या नहीं, क्या वास्तव में आसपास कोई अंगूर का बाग था या नहीं। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह इसकी एक संभावित समझ है। तो यह परिच्छेद का कथात्मक प्रवाह है। आइए रुकें और इसके बारे में थोड़ा और सोचें कि यह कथा कैसे सामने आती है और यहां क्या चल रहा है। और मैं इसके बारे में 5 प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में सोच रहा हूं जो यीशु के उत्तरों को स्थापित करते हैं। तो यह इस अर्थ में इतना अधिक प्रवचन नहीं है कि यीशु केवल अपने विचारों के बारे में बोल रहे हैं और वह कर रहे हैं जिसे एक एकालाप या किसी प्रकार का भाषण कहा जा सकता है। यीशु शिष्यों से बातचीत कर रहे हैं। वे उससे सवाल पूछ रहे हैं और वह जवाब दे रहा है। इसलिए यदि यह एक प्रवचन है तो यह एक ऐसा प्रवचन है जिसमें कुछ संवादात्मक तत्व शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि वे आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह उनके प्रश्न हैं जो यीशु को जाने और किसी विषय पर थोड़ी देर बात करने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर एक और सवाल आता है तो वह इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो हम संभवतः इस संवादात्मक प्रवचन को इस तरह संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, पीटर का यीशु से पहला प्रश्न, मैं आपका अनुसरण क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बाद में ऐसा करेंगे। इसके बारे में थोड़ा अस्पष्ट है। तो पीटर का दूसरा प्रश्न है, क्यों? मैं अब तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम मरने वाले हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। मैं अब आपके साथ आ सकता हूं। और यीशु कहते हैं, ठीक है, वास्तव में तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करने वाले हो। लेकिन उसके तुरंत बाद यीशु कहते हैं, और मुझे लगता है कि वह अभी भी कमोबेश सीधे पतरस से बात कर रहे हैं, अपने दिल को परेशान मत होने दीजिए। यह जॉन अध्याय 14 श्लोक 1 को देखने का एक दिलचस्प तरीका प्रतीत होता है, एक पाठ जिसे हम अक्सर संदर्भ से बाहर ले जाते हैं और एक सामान्य नियम के रूप में कहते हैं, अपने दिल को परेशान मत करो। बेशक इसका बहुत व्यापक निहितार्थ है, लेकिन इसके तात्कालिक संदर्भ में यह पतरस से बात कर रहा है जिसे अभी बताया गया है कि वह यीशु को अस्वीकार कर देगा। तो यह है, आप जानते हैं, अब आप मेरा अनुसरण नहीं कर पाएंगे, भले ही आप ईमानदारी से कहते हैं कि आप मेरे लिए मरेंगे, आप उस तरह से मेरे साथ आएंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन यह ठीक है। आप अभी भी मेरे लोगों में से एक रहेंगे और आप भविष्य में भी मेरी उपस्थिति प्राप्त करेंगे। तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। फिर थॉमस इसमें शामिल हो जाता है और वह जानना चाहता है। वह कहता है, मूल रूप से ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। हमें रास्ता नहीं मालूम। तो यह इनमें से एक की तरह है, न केवल यह बल्कि वह भी हल्का और भारी, कल वा होमर एक चीज से दूसरी सादृश्य प्रकार की चीजें। इसलिए न केवल हम नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, बल्कि हम यह भी नहीं जानते कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो यीशु कहना शुरू करते हैं, मैं वास्तव में मार्ग हूँ। इसलिए तुम जानते हो कि मैं किस मार्ग पर जा रहा हूँ, क्योंकि मार्ग मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ और जीवन भी मैं ही हूँ, और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस बिंदु पर फिलिप कहते हैं, बस हमें पिता को दिखाओ। तुम जानते हो यीशु ने कहा है, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अच्छा, फिर हमें बाप का दर्शन कराओ। यीशु उत्तर देते हैं, अनिवार्य रूप से मैंने अपने सिखाने के तरीके और अपने द्वारा किए गए चमत्कारों से तुम्हें पहले ही पिता दिखा दिया है। मैंने जो कुछ भी किया है वह पिता के आदेश पर किया है। मैं उसका एजेंट रहा हूँ, इसलिए यदि आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। और इतना ही नहीं, वह कह रहा है, भले ही मैं जा रहा हूँ, मैं सहायक पैराक्लेटोस भेज रहा हूँ, वकील, दिलासा देने वाला, हालांकि आप उस शब्द का अनुवाद करना चाहते हैं। तो न केवल आपके पास मेरा सूचक, मेरा उदाहरण, मेरी शिक्षा, मेरे चमत्कार हैं, जिन्होंने आपको पिता को दिखाया है, आपको वह सहायक भी प्राप्त होने वाला है जो आपके साथ मेरी उपस्थिति जारी रखेगा और जो आपको दिखाता रहेगा कि कौन है पिता है। इस बिंदु पर यहूदा कहता है, ठीक है, आप अपने आप को केवल हमें कैसे दिखाएंगे और दुनिया को नहीं। इस बिंदु पर मुझे लगता है कि यह कुछ मायनों में शायद इन प्रश्नों को समझने के लिए सबसे कठिन प्रतिक्रिया है। और यीशु अनिवार्य रूप से यहूदा से कहते हैं, जो जानना चाहता है कि यीशु को व्यापक दुनिया में अच्छी तरह से क्यों नहीं जाना जाएगा। हर कोई क्यों जीता उसे ऐसे न जाने जैसे वे जानते हैं। जाहिर है, जो कोई मुझसे प्यार करता है, पद 23, वह मेरी शिक्षा का पालन करेगा और मेरे पिता उनसे प्यार करेंगे और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ अपना घर बनाएंगे। दूसरे शब्दों में यीशु यहाँ कह रहे हैं कि खुद को दुनिया के सामने दिखाने का मतलब होगा, मैं खुद को किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना जो मुझसे प्यार करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्तिगत रूप से आत्मा के माध्यम से मेरे साथ संबंध रखेगा। इसलिए जो कोई मुझसे प्रेम नहीं रखता, पद 24, वह मेरी शिक्षा का पालन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वह वहाँ कह रहा है, देखो यहूदा, भविष्य में यहाँ एक द्वंद्व, एक विभाजन होने वाला है, जैसा कि मेरे मंत्रालय में पहले से ही हो चुका है। कुछ लोग जो मैं सिखा रहा हूँ उसे स्वीकार करेंगे, कुछ लोग जो मैं सिखा रहा हूँ उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यह केवल मेरे लिए खुद को दुनिया के सामने दिखाने का मामला नहीं है। यह दुनिया द्वारा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने की बात है जो मुझे पिता से प्राप्त हुई। इसलिए यदि वे उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं जो मैंने पिता से प्राप्त की है, यदि वे मेरे संदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ से उनसे संबंधित नहीं होने जा रहा हूँ। तो यह स्पष्ट रूप से एक प्रकार के संवाद के रूप में अध्याय का सार है, और यह ऐसा नहीं है जो यीशु के कुछ गहन शिक्षण पर जाने के रूप में विकसित होता है, बल्कि उनके द्वारा शिष्यों के प्रश्नों का सीधे उत्तर देने के रूप में विकसित होता है। इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु की इस घोषणा से कि वह जा रहा है, उनकी घबराहट, उनकी उलझन और उनकी पूरी निराशा को देखते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए यह कैसा होता अगर वे शायद 3 साल तक उनके साथ घूमते और बात करते और शायद हर जागने का 1 घंटा उनकी उपस्थिति में बिताते, उन्हें सुनते, उन्हें देखते, और अब वह कह रहे हैं, मैं हूँ बाहर और तुम नहीं हो। क्या इससे आपके पाल की हवा नहीं निकल जाएगी? इसलिए वे यीशु को सवालों से घेरना शुरू कर देते हैं और उनका तथाकथित प्रवचन वास्तव में उनके सवालों का जवाब देने का एक तरीका है। तो आइए अब वापस जाएं और कुछ विशिष्ट मामलों पर नजर डालें जिनका सामना हम चर्चा में करते हैं और देखते हैं कि हम इनमें से कुछ मुद्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। निःसंदेह प्रवचन में पहली बात यह होती है कि यीशु नई आज्ञा दे रहे हैं और बोलने के बाद जैसे ही यहूदा श्लोक 30 में चले जाते हैं, यीशु पहली बात जो वह कहते हैं वह है, अब मनुष्य का पुत्र महिमामंडित है और उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। मुझे लगता है कि वह अब कह रहा है कि जुडास चला गया है और चीजें गति में आ गई हैं, चीजें अब बहुत तेजी से आपके सामने आने वाली हैं। वह कह रहा है कि मेरा समय आ गया है, सलीब मंडरा रहा है, इसकी छाया पहले से ही इस प्रवचन पर पड़ चुकी है। इसलिए यीशु शिष्यों को पवित्र आत्मा के माध्यम से स्वयं की आध्यात्मिक उपस्थिति के बारे में सिखाकर शारीरिक रूप से उनकी अनुपस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यह त्रिनेत्र है, यदि आप इसे कहना चाहते हैं, तो पिता और पुत्र के बीच पारस्परिकता जो पहले से ही यीशु की शिक्षाओं और इस सुसमाचार में उनके द्वारा किए गए कार्यों में देखी गई है, तो जुनून में यह पारस्परिकता जारी रहेगी। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा होती है और उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर स्वयं में पुत्र की महिमा करेगा और तुरंत उसकी महिमा करेगा। तो यह आने वाला है और इसलिए चीजें तेजी से विकसित होंगी। तो यीशु कहते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे नहीं देखोगे। मैं चला गया होगा। मैं जहां हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि यही वह शिक्षा है जिसने उन प्रश्नों को जन्म दिया है जिन्हें हमने अभी अध्याय 14 में देखा है। तो यीशु इसके आलोक में अब जब यहूदा चला गया है और उन घटनाओं को गति दे रहा है जिनके परिणामस्वरूप जल्द ही यीशु होंगे क्रूस पर चढ़ाए जाने पर, पहली बात जो वह उन्हें बताना चाहता है कि उसकी अनुपस्थिति में इस नई स्थिति से निपटने के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता है जिसे हम आज देखते हैं और नई आज्ञा कहते हैं। तो जॉन 13:34 में हमारे पास वह पाठ है जिससे आप में से कई लोग पहले से ही परिचित हैं। मुझे यकीन है मैं आपको एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्यार करें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं और वह इसे एक नई आज्ञा के रूप में क्यों संदर्भित कर रहे हैं? जब हम किसी चीज के बारे में नए होने के बारे में सोचते हैं तो हम उसे किसी ऐसी चीज के रूप में सोच सकते हैं जिसे आप कह सकते हैं बिल्कुल नया अभिव्यक्ति, किसी भी तरह, आकार या रूप में पूरी तरह से अभूतपूर्व या कुछ ऐसा जो नया है। यह भाव कि यह वास्तव में पुरानी किसी चीज को देखने का एक नवीनीकृत या नया तरीका है। क्या नई आज्ञा कुछ ऐसी है जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में पहले कभी नहीं सुना गया है, या यह नई अंतर्दृष्टि, नई पृष्ठभूमि, नई प्रेरणा और एक नए उदाहरण के साथ एक नई पैकेजिंग है जो इसे प्रेरित करती है? मैं सोच रहा हूं कि यह संभवतः पहले वाला ही है। तो मैं कहूंगा कि यीशु की आज्ञा बिल्कुल नई नहीं है। जैसा कि हम सिनॉप्टिक परंपरा से जानते हैं, जब पुराने नियम की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में पूछा गया तो यीशु ने संकेत दिया, लेविकस 19 को एक साथ लाया और कहा कि ईश्वर को अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना वह रूपरेखा है जिस पर संपूर्ण टोरा बनाया गया है। सब कुछ वस्तुतः उसी पर निलंबित है, हर चीज उसी से जुड़ती है। इसलिए यह बिल्कुल भी नई शिक्षा नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यदि हम एक पल रुकें और हिब्रू बाइबल को देखें तो आइए लेविटिकस अध्याय 19 को देखें। लेविटिकस 19 में हमारे पास वह पाठ है जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है, जिसे यीशु ने शेमा प्रेमी ईश्वर के ठीक बगल में उद्धृत किया है। पूरे मन से पुराने नियम की मुख्य शिक्षा के रूप में, लेकिन जब हम श्लोक 18 से थोड़ा आगे लेव्य व्यवस्था 19 को देखते हैं जहां हम पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे आप खुद से करते हैं, तो इसके अलावा कुछ अतिरिक्त पाठ भी हैं जो प्रेरणा के संदर्भ में काफी दिलचस्प हैं। इसलिए यदि आप श्लोक 33 और 34 के अध्याय पर थोड़ा और गौर करें तो यह कहता है, जब कोई अजनबी आपके देश में आपके बीच रहता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। आपके बीच रहने वाले विदेशी को आपका मूल निवासी माना जाना चाहिए, उन्हें अपने जैसा प्यार करो। इसलिए यदि आप पद 18 में आश्चर्य करना शुरू करते हैं कि पड़ोसी कौन है, तो यह केवल साथी इसराइली नहीं है, यह वह व्यक्ति है जो आपके समुदाय में रह रहा है। उनसे वैसे ही प्यार करें जैसे आप खुद से करते हैं। तुम मिस्र में परदेशी थे, मैं तुम्हारा स्वामी परमेश्वर हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इसराइल राष्ट्र को जो सिखाया जा रहा है वह यह है कि आपने अनुभव किया है कि मिस्र में अजनबी होना क्या होता है। आप जानते हैं कि यह कैसा होता है, और शायद आपको एक अजीब देश में एक अजनबी के रूप में उचित व्यवहार नहीं किए जाने को लेकर अपनी समस्याएं थीं। तो तुम मिस्र में परदेशी थे, तुम अजनबी थे। आप जानते हैं कि अजनबी होना कैसा होता है, दूसरे लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। मैं तुम्हारा स्वामी परमेश्वर हूं। तो इस संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से उनसे यह कह रहा है कि परमेश्वर ने इसराइल से तब प्रेम किया जब वे एक अजीब देश में अजनबी थे। इसलिए उन्होंने वहां ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया और उन्हें मूल रूप से ईश्वर से प्रेम करना सिखाया जा रहा था जैसे ईश्वर ने उनसे प्रेम किया। तो यह विचार कि तुम्हें एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, कोई बिल्कुल नया नवोन्वेष नहीं है और न ही कोई अभूतपूर्व शिक्षा है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो हिब्रू बाइबल में जो चल रहा है उस पर आधारित है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में इसका अनुसरण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में इसराइल को कैसे बताया गया है कि भगवान उनसे प्यार करते थे, इसलिए नहीं कि वे प्यारे थे या वे उल्लेखनीय थे या उनके पास पहले से ही स्थिति थी और भगवान ने कहा, मैं उनसे बेहतर संबंध रखता हूँ क्योंकि वे पहले से ही काफी शक्तिशाली हैं। एकदम विपरीत, व्यवस्था विवरण में इसराइल से प्रेम करने की ईश्वर की प्रेरणा रहस्यमय प्रतीत होती है। भगवान ने उनसे प्रेम करने का निश्चय किया। वह निश्चित रूप से उनसे प्यार नहीं करता था क्योंकि वे कौन थे। वह मूल रूप से कहता है कि जब उसने उन्हें पाया और जब उसने उनसे प्यार करना शुरू किया तो वे कुछ भी नहीं थे। इसलिए ईश्वर से प्रेम करना कुछ नहीं है, और हमारे लिए ईश्वर का प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो योग्य हो या कुछ ऐसा हो जो किसी भी तरह से योग्य हो या कुछ ऐसा जो पारस्परिक चीज हो। परमेश्वर इसराइल से प्रेम करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि वह उनसे प्रेम करेगा तो इसराइल उसके लिए क्या करेगा। आप जानते हैं, जैसे हम लोगों के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करते हैं, हम एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं, उस अर्थ में पारस्परिकता जिसका पुराने नियम के समय में या आज भगवान द्वारा अपने लोगों से प्रेम करने की प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे पुराने नियम में इज़राइल को उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए ईश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया गया था, वैसे ही यीशु कह रहे हैं कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यदि हम समय लें और एकरूपता प्राप्त करें और जॉन के सुसमाचार में प्रेम शब्द को देखें, तो हम पाएंगे कि शिष्यों के लिए यीशु का प्रेम वही प्रेम है जिसके साथ भगवान ने उनसे प्रेम किया था। इसलिए इस विशेष पाठ में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यीशु ने शायद यह कहा होगा कि एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, और जिस तरह से मैंने तुमसे प्यार किया है उसी तरह पिता ने भी मुझसे प्यार किया है। यह अन्य ग्रंथों में जोहानिन की शिक्षा है, लेकिन इस विशेष बिंदु पर यह सही नहीं है। तो नई आज्ञा के बारे में नया क्या है? यीशु ने इसे नया क्यों कहा? मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज इसे नया बनाती है वह यह है कि मुझे आपका टुकड़ा बहुत पसंद आया है। परमेश्वर के लोगों ने सदियों से उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम और विश्वासयोग्यता की कई अभिव्यक्तियां देखी थीं। शायद आप पुराने नियम में कह सकते हैं कि इज़राइल के लिए भगवान के प्यार का सबसे बड़ा उदाहरण वह शक्तिशाली तरीका था जिसमें वह उन्हें मिस्र से बाहर लाया और उन्हें फिलिस्तीन में इज़राइल में एक नई मातृभूमि में लाया। तो यह ऐसा होगा, वाह, भगवान ने हमारे लिए ऐसा किया। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम ऐसे तरीके से जिए जिससे उसका सम्मान हो। इसलिए जब परमेश्वर ने उन्हें कानून दिया तो उसने उन्हें कानून उस साधन के रूप में दिया जिसके द्वारा वे उस नई भूमि में रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे जो उसने उन्हें दी थी। तो यीशु यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है, क्योंकि क्रूस की छाया उन सभी पर मंडरा रही है। एक दूसरे से वैसे ही प्यार करना जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब न केवल वही है जो उन्होंने यीशु में खुद को नम्र करते हुए और अपने पैर धोते हुए अनुभव किया था, बल्कि इसका मतलब एक दूसरे से वैसे ही प्यार करना है जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है और अपने पापों का दंड चुकाने के लिए खुद को बलिदान कर रहे हैं। एक प्रदान करें आपके लिए मेरे माध्यम से ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जारी रखने का तरीका। तो मुझे लगता है यह प्यार का वह नया मॉडल है, प्यार का वह नया उदाहरण है जो इस पाठ को एक नया पाठ बनाता है, साथ ही जिस तरह से आने वाली आत्मा उन्हें भगवान के प्यार को और अधिक आंतरिक बनाने में मदद करेगी। यीशु उन्हें आत्मा के आने के बारे में सिखाने जा रहे हैं और वह उनसे कह रहे हैं, आत्मा तुम्हारे साथ है, आप आत्मा से बिल्कुल अपरिचित नहीं हैं। आत्मा आपके जीवन में पहले से ही काम कर रही है, लेकिन आत्मा के बाद भी कुछ घटित होने वाला है। तो अब जब आप ईश्वर के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने जा रहे हैं, आत्मा के माध्यम से ईश्वर के साथ एक ताज़ा नवीनीकृत रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक नई आज्ञा देने जा रहा हूँ। तो इस बारे में सोचें कि किस तरह से हम कभी कभी धार्मिक रूप से पुराने टेस्टामेंट और नए टेस्टामेंट के संबंध धर्मग्रंथ की एकता बनाम विविधता के बारे में बहस करते हैं, जिस तरह से भगवान बाइबल पुराने और नए टेस्टामेंट में अपने लोगों से संबंधित हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर हमारी अलग अलग युद्ध रेखाएं तैयार हैं। हमारे पास सख्त अनुबंध उन्मुख धर्मशास्त्री हैं और हमारे पास युगवादी हैं जिन्होंने बाइबल को छोटे छोटे युगों और युगों में टुकड़ों में काट दिया है। यह सब इस बात से संबंधित है कि हम इस तरह के पाठ पर कैसे पहुंचेंगे। इसलिए यदि हमें बाइबल को एक पुस्तक के रूप में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो हम शायद सोचेंगे कि नई आज्ञा उसी तर्ज पर है जैसा मैंने अभी इसका वर्णन किया है। यदि आपको बाइबल को पुराने और नए नियम के रूप में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है, तो शायद आप यह सोचने के लिए अधिक इच्छुक होंगे कि यह एक बिल्कुल नई आज्ञा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको इन सभी पुराने नियम के ग्रंथों से निपटना होगा, जो मूल रूप से इसराइल को वही बात कहते हैं जो भगवान यहाँ अपने शिष्यों से कह रहे हैं। इसलिए इसके बारे में सोचते रहें और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो धर्मग्रंथ की आपकी समझ के अनुकूल हो। एक और मामला जिसके बारे में हम यहाँ सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं, वह यह है कि यीशु श्लोक 2 और 3 में क्या बात कर रहे हैं जब वह अपने आने की बात करते हैं। यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, विशेष रूप से जॉन के संबंध में, जिसकी युगांत विद्या के बारे में हम पिछले वीडियो में थोड़ा बात कर रहे हैं। युगांत विद्या का एक उद्घाटन प्रकार है। यह केवल ऐसा नहीं है कि वह समय आ रहा है जब ईश्वर शासन करेगा और ईश्वर न्याय करेगा, बल्कि यीशु ने अध्याय 5 में सिखाया है कि जो समय आने वाला है वह कुछ अर्थों में पहले ही आ चुका है। लोग पहले से ही परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं जो उन्हें मृतकों में से जीवन की ओर बुला रहा है, और वे पहले से ही जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो युगांत संबंधी निर्णय और पुरस्कार की कल्पना को यीशु की शिक्षा द्वारा वर्तमान में लाया गया है। तो हम इस बहुत ही परिचित पाठ को देख रहे हैं, अपने दिलों को परेशान मत होने दो। आप भगवान पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भी विश्वास करें। मेरे पिता के घर में कई कमरे हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए वहां जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो लौटकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। मैं इस पाठ पर आपकी पृष्ठभूमि नहीं जानता, लेकिन मुझे निश्चित रूप से एक नए ईसाई के रूप में पढ़ाया गया था, और तब से मैंने अक्सर इसके बारे में पढ़ाते हुए सुना है कि यीशु उस बारे में बोल रहे हैं जिसे आम तौर पर उनका दूसरा आगमन कहा जाता है, कि वह उस समय के बारे में बोल रहे हैं जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा और अपने लोगों को अपने पास ले आएगा और फिर वापस आएगा और शायद उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए स्वर्ग में वापस ले जाएगा। इस समझ के साथ समस्या यह है, हालांकि एक थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 जैसे ग्रंथों के साथ इसकी कुछ समानता हो सकती है, लेकिन यह युगांत शास्त्र के बारे में बाइबल की पूर्ण कक्षीय शिक्षा में बिल्कुल फिट नहीं बैठती है कि भगवान दुनिया को छुड़ाने जा रहे हैं, वह ऐसा करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड को छुड़ाओ और वह दुनिया को बदलने के लिए वापस आने वाला है। जैसे ही धर्मग्रंथ जॉन से संबंधित सर्वनाश में अपने निष्कर्ष पर आता है, हमारे पास नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है, और यह स्वर्ग को पृथ्वी पर आने और पृथ्वी को ठीक करने का चित्रण कर रहा है। इसलिए कुल मिलाकर यह युगांत शास्त्र जैसा नहीं है कि ईश्वर अपने लोगों को पृथ्वी नामक इस घिनौनी जगह से निकाल रहा है, जैसे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में डनकर्क से ब्रिटिश सैनिकों को निकालना था और दुनिया को शैतान के प्रभुत्व में सौंपना था, लेकिन फिर भी हमें मिल गया, भगवान के लोग बाहर आ गए, इसलिए राहत की बड़ी सांस ली, हम उस दुष्ट जगह से बाहर निकल आए। यह बाइबल युगांत विद्या का पूर्ण विस्तारित दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि इससे शैतान को बड़ी जीत मिलती है। अंत में ईश्वर सब कुछ में होगा और संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर के साथ मिलमिलाप होगा। इसलिए युगांत शास्त्र की एक धारणा होनी चाहिए जो केवल इस पलायनवाद से परे हो, जहां भगवान के लोगों को उस उत्पीड़न से राहत मिलती है जो उन्हें बुरी ताकतों से मिला है। इसलिए जब हम देखते हैं कि जॉन 14 से 16 में यीशु के आगमन के बारे में कुल मिलाकर क्या सिखाया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यीशु का आगमन शब्द के कुछ अर्थों में 3 अलग अलग आगमन को संदर्भित कर सकता है, और हमें इसकी आवश्यकता है इन आगमन को वृद्धिशील तरीकों के रूप में देखें जिसमें दुनिया में ईश्वर की उपस्थिति प्रकट हो रही है और बढ़ रही है। तो हमारे पास शायद तीन अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम इस सामग्री में यीशु के आगमन को समझ सकते हैं। इसलिए हम इन श्रेणियों को प्रस्तुत करेंगे और हम इनमें से कुछ अंशों को देखेंगे और उनके बारे में कुछ निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। जब हम यह शब्द सुनते हैं कि यीशु शिष्यों के पास वापस आ रहे हैं, तो यह संभवतः उनके पुनरुत्थान के बाद की उपस्थिति के बारे में बात कर सकता है। इसलिए वह कब्र में अपने समय के तुरंत बाद उनसे मिलने वापस आएगा। और हम जॉन में अध्याय 20 और 21 में जानते हैं, शिष्यों के सामने यीशु के पुनरुत्थान के बाद के कई दर्शन हैं। वह उन्हें वहां पढ़ाने और अपनी अनुपस्थिति में रहने के लिए तैयार करने में काफी समय व्यतीत करता है। हम इसे बाइबल के अन्य खंडों से भी जानते हैं, मुख्य रूप से जिस तरह से ल्यूक 24 और अधिनियम अध्याय 1 में कार्य करता है, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच शिष्यों को यीशु की शिक्षा। यह भी हो सकता है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु आत्मा के माध्यम से एक अर्थ में उनके पास आ रहे हों। पुनरुत्थान के बाद की उपस्थिति में से एक में यीशु ने शिष्यों पर सांस ली और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कहा। वह ऐसा उन्हें मिशन के लिए तैयार करने के संदर्भ में करता है। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो इनमें से कुछ पाठ जिन्हें हम अधिक गहराई से देखने वाले हैं, उनका संबंध इससे हो सकता है कि यीशु इस अर्थ में वापस आ रहे हैं कि वह उनके साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए आत्मा भेज रहे हैं। निश्चित रूप से यह अब उनके साथ यीशु की भौतिक उपस्थिति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक उपस्थिति है, लेकिन यह केवल कुछ धुंधली अस्पष्ट उपस्थिति नहीं है। यह यीशु की उपस्थिति ही थी जिसने परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से उनमें मध्यस्थता की। इसलिए वह उनके साथ अपनी उपस्थिति के तरीके को बदल रहा है। फिर स्पष्ट रूप से वह तरीका है जिससे यीशु मृतकों को पुनर्जीवित करने और दुनिया में न्याय लाने, मामलों का फैसला करने और एक ऐसी दुनिया की स्थापना करने के लिए युग के अंत में व्यक्तिगत रूप से आते हैं, जिसमें पाप अब भगवान के लोगों पर प्रभाव नहीं डालता है। मुझे लगता है कि हम जॉन में भी इस प्रकार की युगांत विद्या पाते हैं। तो आइए एक पल के लिए रुकें और कई अंशों को देखें जो इस प्रकार की चीजों के बारे में बात करते हैं और इसे सुलझाना शुरू करते हैं। मैंने जो तीन श्रेणियां दी हैं, मैं उन्हें एकमात्र संभावित विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। हम यहां किसी प्रकार का न्यूनीकरणवाद नहीं चाहते। इसके बारे में सोचने की अन्य संभावित श्रेणियां और तरीके भी हो सकते हैं जो उन तीन श्रेणियों से परे हों जो मैंने आपको यहां दी हैं। इसलिए यदि हम यूहन्ना अध्याय 5 में वापस जाते हैं, तो हम शायद खुद को याद दिलाते हैं कि जब यीशु तुरंत यूहन्ना अध्याय 5 में विरोधियों का सामना कर रहे थे, तो किसको यह पसंद नहीं था कि वह किस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे और लकवाग्रस्त व्यक्ति को ठीक कर रहे थे। यह यहीं पर एक अर्थ में जॉन की युगांत विद्या हमारे सामने काफी स्पष्ट रूप से आती है। पद 24, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दोष न लगाया जाएगा, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया है। आपने देखा कि यहां की भाषा कैसे युगांत शास्त्र से प्रेरित है। जो मेरा वचन सुनता है और मुझ पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दोष न लगाया जाएगा। यह एक गूढ़ भविष्य की घटना के रूप में निर्णय की तरह है। जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, तो भविष्य में किसी के भाग्य का निर्धारण होता है। यह तो अब तय हो चुका है। यह केवल भविष्य में घटित होने वाली बात नहीं है। अगले ही श्लोक 5:25 में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एक समय आ रहा है और अब आ गया है। यह महत्वपूर्ण अंश है। और अब वह समय आ गया है जब मरे हुए परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। तो यीशु का वह संदेश जो वह सिखा रहा है कि लोग सुन रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, को यहाँ अंतिम निर्णय की अग्रिम लोडिंग के रूप में मृतकों में से पुनरुत्थान के रूप में शैलीबद्ध किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब यह है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं होगा या अंतिम निर्णय अब पूरी तरह से उपस्थिति में साकार हो गया है, क्योंकि यीशु पद 28 में कहते हैं, इससे अचंभा न करो, वह समय आता है कि जितने अपनी कब्रों में हैं सब उसका शब्द सुनकर बाहर निकल आएंगे। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वे जीवन में उठ खड़े होंगे, जिन लोगों ने बुरा काम किया है वे दोषी ठहराए जाने के लिए उठ खड़े होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि श्लोक 28 और 29 में यीशु स्पष्ट रूप से उस बारे में बात करते हैं जिसे आम तौर पर भविष्य के युगांत शास्त्र कहा जाता है, अंतिम निर्णय के बारे में। तब वह जो कर रहा है वह अंतिम निर्णय के प्रकाश में पहले से ही पृथ्वी पर आयात किए गए निर्णय के समय के रूप में उसके मंत्रालय के तथ्य का अनुकरण कर रहा है। इसलिए अंतिम निर्णय के बारे में हम जो जानते हैं उसे यहाँ नकारा नहीं जा रहा है। यह जो हो रहा है वह एक प्रकार का धार्मिक फ्रंट लोडिंग है। वर्तमान में यीशु के मंत्रालय को युगांत शास्त्रीय शब्दावली में समझा जा रहा है। तो अगर हम अध्याय 5 से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अध्याय 11 में यीशु और मार्था के बीच बातचीत की ओर। लाजर कब्र में है और मार्था और मैरी अपने दोस्तों की तरह उसे दुखी कर रहे हैं। यीशु अंततः 4 दिन की देरी से उनके मन में यरूशलेम पहुंचे। जॉन 11:21 में मार्था यीशु से कहती है, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। पद 23 यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। वह यीशु को यह कहते हुए सुनती है। जब वह ऐसा कहता है, मुझे पता है कि वह अंतिम दिन में पुनरुत्थान में फिर से उठेगा। इसलिए उसके मन में पूरी तरह से भविष्य की युगांत विद्या है। शायद जब हम पहली बार श्लोक 23 पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यीशु भविष्य के युगांत विज्ञान के बारे में भी बात कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे कहानी सामने आती है हम देखते हैं कि वह भविष्य के युगांत विज्ञान से कहीं अधिक कुछ के बारे में बात कर रहा है। अंतिम दिन में पुनरुत्थान के बारे में मार्था की टिप्पणी के जवाब में यीशु ने एक टिप्पणी की है जिसे मेरे ख्याल से वास्तविक युगांत शास्त्र के रूप में स्टाइल किया जा सकता है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर कर भी जीवित रहेगा। यह भविष्य के युगांत विज्ञान कथन जैसा लगता है। और जो कोई मुझ पर विश्वास करके जीवित रहेगा वह कभी न मरेगा। इसलिए यदि वर्तमान में यीशु के माध्यम से आपका ईश्वर के साथ संबंध है तो मृत्यु अंतिम मामला नहीं है, मृत्यु सापेक्ष है। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप वास्तव में कभी नहीं मरेंगे, आप वास्तव में कभी भी ईश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होंगे। तो वह मार्था से कहता है, क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? वह कहती है, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मसीहा हैं, ईश्वर के पुत्र जो दुनिया में आएंगे। वह लाजर के पुनरुत्थान को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखने वाली है, कुछ हद तक युगांत विज्ञान का एहसास। इन सबको एक साथ रखते हुए हम आम तौर पर आने वाले युग की शक्तियों के साथ उद्घाटन युगांत विज्ञान की बात करते हैं और जिस तरह से आने वाले युग का चित्रण किया गया है वह पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद होना शुरू हो गया है। जॉन में यीशु के आगमन और युगांत शास्त्र पर हमारा अगला मुख्य पाठ अध्याय 14 छंद 2 और 3 होगा। इसलिए हम आम तौर पर यह समझना चाहते होंगे कि यह विशेष रूप से भविष्य के बारे में बात करने वाला एक पाठ है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं पृष्ठभूमि के साथ, समय आ रहा है लेकिन अब है, मैं पहले से ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, छंद अध्याय 14 छंद 2 और 3 को पढ़ना संभव है, पहले से ही शिष्यों के साथ भगवान की उपस्थिति के बारे में एक बयान के रूप में यीशु का मंत्रालय, मेरे पिता के घर में कई कमरे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ? यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए वापस आऊंगा जहाँ मैं हूँ। निस्संदेह यीशु पिता की उपस्थिति में जा रहा है, तो यह बस हो सकता है कि वह यहाँ उस तरीके के बारे में बात कर रहा है जिसमें वह शिष्यों को उनके जीवन में आत्मा के कार्य के माध्यम से पूरी तरह से पिता की उपस्थिति में लाएगा। डेमोनी शब्द है जो व्युत्पत्तिगत रूप से जॉन 15 के मुख्य विचार से संबंधित है, ग्रीक क्रिया मेनो है। कमरे का यह विचार एक स्थायी स्थान, एक निवास स्थान, एक ऐसा स्थान है जहां आप रहते हैं। यह शब्द यहां अध्याय 14 श्लोक 23 में भी आता है, जहां यीशु यहूदा के जवाब में कहते हैं, इस्करियोती के सवाल के जवाब में नहीं, आप खुद को हमारे सामने क्यों दिखाना चाहते हैं और दुनिया के सामने क्यों नहीं? तो यहूदा यीशु से पूछ रहा है कि तुरंत क्या होगा, आप अपने आप को हमारे सामने क्यों दिखाना चाहते हैं और दुनिया के सामने क्यों नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी शिक्षा का पालन करेगा और पिता उससे प्रेम करेगा और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ अपना घर बनाएंगे, अपना निवास बनाएंगे, अपना मोना बनाएंगे, अपना कमरा बनाएंगे, यदि तुम चाहो तो उनके साथ। तो जब हम 14:23 पढ़ते हैं तो क्या हम इसे भविष्य के युगांत विज्ञान के बारे में एक बयान के रूप में या आत्मा के माध्यम से पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के साथ यीशु की आध्यात्मिक उपस्थिति के बारे में एक बयान के रूप में पढ़ना चाहते हैं? या शायद हम इसे उस तरीके के रूप में पढ़ना चाहते हैं जिसमें यीशु वापस आते हैं और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच कुछ समय के लिए उनके साथ घूमते हैं। किसी भी स्थिति में भविष्य में स्वर्ग में मकानों के बारे में एक सीधा बयान देने के अलावा जॉन 14:03 को पढ़ने के अन्य तरीके भी हैं। यह केवल एक वादा हो सकता है कि पुनरुत्थान के तुरंत बाद यीशु शिष्यों के पास लौट आएंगे और उन्हें इस तरह से आत्मा प्रदान करेंगे कि वे नए जीवन में पिता के साथ और आत्मा की शक्ति में उनके साथ रहेंगे, जो आत्मा उन तक लाता है। इसलिए जब हम 14:23 के प्रकाश में 14:02 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि शायद एक तरीका है जिससे हम पाठ को वास्तविक युगांत शास्त्र के रूप में देख सकते हैं। जॉन 14 में थोड़ा और आगे देखते हुए आत्मा के आने के बारे में अब दिए गए कथनों पर ध्यान दें। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारी सहायता करेगा और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य की आत्मा। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसके प्रकाश में श्लोक 18 पर ध्यान दें, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जल्द ही दुनिया मुझे अब नहीं देख पाएगी, लेकिन आप मुझे देखेंगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम्हें एहसास होता है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो यह वादा जो यीशु पद 18 में करता है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, शायद हमें इस प्रकार के कथन को केवल भविष्य के बारे में बोलने के रूप में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हम युग के अंत में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में कहेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रासंगिक रूप से यह आत्मा के आने के वादे से संबंधित है। तो यह शायद केवल यीशु के अंतिम दूसरे आगमन के बारे में नहीं बोल रहा है, बल्कि उस तरीके के बारे में बोल रहा है जिससे वे उसकी उपस्थिति का अनुभव करना जारी रखेंगे। वह उस आत्मा के माध्यम से उनके पास आएगा जो वह उन्हें देने वाला है। यदि हम श्लोक 25:26 को देखें तो यह आत्मा के आने का एक और वादा है। यह सब बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए ही तुमसे कही हैं, परंतु वकील अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह उसी चीज के बारे में है जैसे कि यीशु व्यक्तिगत रूप से उनके पास आए थे। यदि उनके पास आत्मा है जो विशेष रूप से उन्हें बता रही है कि उसने क्या कहा है, तो यह ऐसा है जैसे कि यीशु व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि आप वह बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अब इनमें से किसी भी पाठ का पूरी तरह से विस्तार नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन तब ऐसा लगता है कि आत्मा का आना शिष्यों के लिए यीशु का आगमन है। और कुछ तरीके जिनमें वह उनके पास आने और उन्हें अनाथों के रूप में नहीं छोड़ने, उन्हें त्यागने नहीं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को जारी रखने का वादा करता है, वे पाठ हैं जो मुझे लगता है कि उन घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जो जल्द ही आने वाली हैं और पवित्र आत्मा के आगमन से संबंधित हैं। जॉन में एक अंतिम पाठ जो मसीह के आगमन के बारे में काफी दिलचस्प है, अध्याय 21 में पुस्तक के उपसंहार में है, जहां यीशु पीटर के साथ उसके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और वह जैसे कि अपने तीन गुना प्रश्न के साथ पीटर को मंत्रालय में बहाल कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन यीशु पतरस से बात करते रहते हैं और पतरस उसके बाद अपने प्रिय शिष्य को देखकर कुछ विचलित हो जाता है और 21 से 21 में यीशु से पूछता है, उसके बारे में क्या? जैसे यदि यह मेरी नियति है तो उसकी क्या नियति है? और यीशु अनिवार्य रूप से पतरस से कहते हैं, यह वास्तव में तुम्हारा काम नहीं है। 21 से 22 में, यदि मैं चाहता हूं कि वह अर्थात प्रिय शिष्य मेरे लौटने तक जीवित रहे तो इससे आपको क्या मतलब? तुम्हें मेरा अनुसरण करना होगा। इस वजह से कथावाचक प्रिय शिष्य आगे कहते हैं, विश्वासियों के बीच यह अफवाह फैल गई कि यह शिष्य नहीं मरेगा। लेकिन निस्संदेह यीशु ने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा। उन्होंने केवल इतना कहा, यदि मैं चाहता हूं कि मेरे लौटने तक वह जीवित रहे तो तुम्हें इससे क्या? तो ये ग्रंथ जो 21 से 22 और 21 से 23 में यीशु की वापसी की बात करते हैं, भविष्य के युगांत शास्त्र के ग्रंथ प्रतीत होते हैं। वे अभी भी इस तथ्य के बारे में सोच रहे हैं कि यदि यीशु चाहते हैं कि उनका प्रिय शिष्य भविष्य में पृथ्वी पर लौटने तक जीवित रहे तो क्या होगा, यह उस पर निर्भर है। लेकिन निस्संदेह प्रिय शिष्य का कहना है कि उसने वास्तव में ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, अगर मैं ऐसा चाहूं तो क्या होगा? तो हमारे पास जॉन में भविष्य के युगांत शास्त्र के दोनों पाठ हैं, लेकिन हमें यह कहना होगा कि शायद जोर वर्तमान पर है और भविष्य की कल्पना वर्णन करती है कि ईश्वर पहले से ही दुनिया में क्या कर रहा है, और इसलिए हम इसे आरंभिक युगांत विज्ञान के रूप में वर्णित करते हैं। भविष्य पहले से ही शक्तिशाली तरीके से वर्तमान में आ चुका है, तो हमारे पास भविष्य की उपस्थिति है। हम पहले ही कर चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं, या हमारे पास अभी है लेकिन अभी तक नहीं, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है। तो जब हम यूहन्ना 14 श्लोक 2 और 3 को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं, वहां किस पर जोर दिया गया है, वास्तव में क्या सिखाया जा रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि अपेक्षाकृत हाल ही में मैं इसके बारे में जितना सोच रहा था उससे कहीं अधिक संभावना है कि यह एक वास्तविक युगांत शास्त्र है। आपको इसके बारे में अपना मन बनाना होगा। जब हम नए नियम में युगांत शास्त्र के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास वास्तव में इसके दो अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसा कि लोकप्रिय धर्मशास्त्र में इसकी व्याख्या की गई है। खैर, हमारे पास एक प्रकार की स्वर्गीय युगांत विद्या है जहां हमें सिखाया जाता है कि यीशु हमें स्वर्ग में वापस लाने और हमें दुनिया से दूर स्वर्ग में अपनी उपस्थिति में ले जाने के लिए वापस आ रहे हैं, जाहिर तौर पर दुनिया में चीजों को वैसे ही छोड़ रहे हैं जैसे वे पहले थीं। एक थिस्सलुनीकियों 4 में पॉल का यह पाठ एक ऐसा पाठ है जिसका उद्देश्य थिस्सलुनीकियों को सांत्वना देना और शायद उनके साथी विश्वासियों के बारे में कुछ भ्रम को हल करना है जो पहले मर चुके थे। वे स्पष्ट रूप से सोच रहे थे कि क्या उनके साथी विश्वासी किसी तरह यीशु को पुनर्जीवित होते हुए देखने से चूक गए होंगे या जब वह वापस लौटे तो जीवित नहीं थे। वहां कुछ भ्रम था जिसका पाठ में संकेत मिलता है। पॉल कहते हैं कि इसके बारे में चिंता न करें कि इन लोगों को छोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा, लेकिन जो लोग पहले मर चुके हैं और जो मसीह के वापस आने पर जीवित हैं उनका पुनर्मिलन होगा। जाहिर है यह भविष्य के युगांत विज्ञान के बारे में एक पाठ है। मैं नहीं जानता कि इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जॉन 5:28-29 जैसे ग्रंथों में एक सांसारिक प्रकार का युगांत विज्ञान भी है जो इस बारे में बताता है कि भगवान पहले से ही पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैथ्यूयन परंपरा Matthew 6:10 के अनुसार जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हमें भगवान के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि भगवान की इच्छा पूरी हो और पृथ्वी पर भगवान के नाम का सम्मान किया जा सके। स्वर्ग में है। इसलिए जब हम वह प्रार्थना करते हैं तो शायद हम मुख्य रूप से मसीह की अंतिम वापसी के बारे में सोच रहे होते हैं ताकि पृथ्वी पर चीजों को ठीक कर सकें और जो टूटा हुआ है उसे ठीक कर सकें, लेकिन शायद हम उद्घाटन की भाषा में भी इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं नहीं जानता कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया था। क्या आप केवल अंत समय के बारे में सोच रहे हैं? ऐसा कहें तो जब मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे और जो टूटा हुआ है उसे ठीक करेंगे, या क्या आप जब आप वह प्रार्थना करते हैं तुलनात्मक रूप से कहें तो छोटी वृद्धिशील छोटी चीजों के बारे में सोचते हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर के शासन को प्रकट करती हैं? मैंने इसके बारे में दोनों तरीकों से सोचा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसी स्वर्ग में होती है तो आपका राज्य आए, और अपेक्षाकृत छोटी चीजें जैसे जोड़े को वैवाहिक समस्याओं का समाधान मिल जाए जो परेशान कर रही हैं वे, और एक बच्चा जो विद्रोही रहा है और जिसे सीधे तौर पर ईसा मसीह का पूरी तरह से पालन करने में समस्याएं आ रही हैं। एक पड़ोस का एक साथ आना और जातीय मतभेदों या इस तरह की चीजों को हल करना, बस कोई भी छोटी चीज जो यीशु के सुसमाचार की शक्ति को एक छोटे तरीके से प्रकट करती है। कुल मिलाकर ये चीजें हमें पहले से ही वह शक्ति दिखा रही हैं जो अंततः भविष्य में दुनिया पर पूरी तरह से शासन करेगी। इसलिए हमारे अपने ईसाइयों के बीच एक व्यक्ति के रूप में जीवन जीता है। जब हम जीत हासिल करते हैं, जब हम अपने विश्वास में मसीह में बढ़ते हैं, ईसाई परिवारों के बीच, उन ईसाइयों के बीच जो पड़ोस में रहते हैं और वहां ईसा मसीह की उपस्थिति होने का अवसर मिलता है, कार्यस्थल में जहां ईसाई हैं, चर्चों में मसीह के लिए गवाही देने और प्रभाव डालने का अवसर है, जिन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है और वे सुसमाचार के साथ अपने पड़ोस और दुनिया भर में पहुंच रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के लिए अपने प्यार से भगवान के लोग होने का क्या मतलब है, और उनकी एकता से ये सभी चीजें ईश्वर की बढ़ती हुई उपस्थिति और शक्तियां हैं जो दुनिया में दिखाई जा रही हैं। इसलिए जब हम प्रभु की प्रार्थना जैसे ग्रंथों के बारे में सोचते हैं, जब हम जॉन अध्याय 14 जैसे ग्रंथों के बारे में सोचते हैं और जिस तरह से दुनिया में भगवान की उपस्थिति प्रकट हो रही है और ईसाइयों द्वारा लोगों को भगवान का शासन और शासन दिखाया जा रहा है, अब यह एक संकेत है या एक तरह से भविष्य में क्या होगा इसका वादा कर रहा है। इसलिए युगांत शास्त्र को देखने के ये दोनों तरीके मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फिर सवाल यह होगा कि यूहन्ना 14:02 और 3 युगांत शास्त्र के बारे में सोचने के इन दो तरीकों में कैसे फिट बैठते हैं। और मैं उस प्रश्न को आपके भविष्य के विचार विमर्श के लिए आप पर छोड़ दूंगा। मैं अभी भी इस मामले पर प्रक्रिया में हूं। तो जॉन 14:16 हमें पवित्र आत्मा के बारे में क्या कहता है? यहाँ जिस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है वह ग्रीक शब्द पैराक्लेटोस है। आपने अक्सर लोगों को चर्च में इसके बारे में बात करते हुए सुना होगा। हमने लोगों को पैराक्लेट के बारे में बात करते हुए सुना है। मुझे लगता है कि यह इसका वर्णन करने के किसी भी तरीके जितना ही अच्छा है। तो हमारे पास ये कई ग्रंथ हैं जो इस तरह से आत्मा के बारे में बात करते हैं। पैराक्लेटोस शब्द का उपयोग कैसे किया जाता है? तो यह शब्द एक व्यक्ति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है, आमतौर पर एक मानव व्यक्ति जो किसी प्रकार का कानूनी वकील हो सकता है, एक वकील एक अदालत कक्ष सेटिंग में एक वकील हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी प्रकार का परामर्शदाता हो, कोई विशेषज्ञ हो जो सलाह दे रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको किसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हो या आपको कुछ करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो या किसी तरह से आपके लिए हस्तक्षेप कर रहा हो। तो इस संबंध में इस शब्द की पृष्ठभूमि काफी व्यापक है, हालांकि कानूनी वकालत इसकी पृष्ठभूमि का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए जब यीशु आत्मा के बारे में बात करते हैं तो यह जानना मुश्किल होता है कि क्या हमें इस शब्द का अनुवाद सहायक के रूप में, वकील के रूप में, दिलासा देने वाले के रूप में करना चाहिए या बस इसे अंग्रेजी में अनुवादित करना चाहिए और उसे पैराक्लेट कहना चाहिए और इसे वहीं छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक तरह से पवित्र आत्मा को सहायक कहने का समर्थक हूं क्योंकि यह सभी आधारों को कवर करता है। मैं देख रहा हूं कि एनआईवी अधिवक्ता शब्द का प्रयोग कर रहा है और यह ठीक भी है। हम यहां आत्मा के बारे में क्या देखते हैं जिसका वादा यीशु शिष्यों से कर रहे हैं? अध्याय 14:16 कहता है, मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक और वकील दूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे लगता है कि दूसरा शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि यीशु इस बिंदु तक उनके वकील रहे हैं और इसलिए वह उनके लिए एक और वकील प्रदान कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो वही जारी रखेगा जो वह पहले से कर चुका है। वह उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। तो सामान्य तौर पर आत्मा उनका सहायक होगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की उपस्थिति दिखाते हुए उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। वह उनकी मदद के लिए उनके साथ रहेंगे। वह सत्य की आत्मा है। सत्य की आत्मा का तात्पर्य यह होगा कि आत्मा उनके सामने ईश्वर को प्रकट करना जारी रखेगी, उन्हें दिखाएगी कि ईश्वर वास्तव में कौन है और उन्हें ईश्वर की सच्चाई, ईश्वर वास्तव में कौन है, इसके बारे में प्रस्तावित तथ्यों को प्रकट करना है। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। यह आपके साथ रहता है और आपके अंदर रहेगा। यह एक दिलचस्प भाषा भी है। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा इस बिंदु तक शिष्यों से अनुपस्थित नहीं था। हम यूहन्ना 7:39 को याद करते हैं कि पाठ कहता है कि पवित्र आत्मा अभी तक नहीं दिया गया था क्योंकि यीशु को अभी तक महिमामंडित नहीं किया गया था। उस पाठ का मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा के पास पहले से ही कोई मंत्रालय और गतिविधि नहीं थी, शिष्यों के साथ उपस्थिति नहीं थी, लेकिन इसका मतलब है कि यीशु की महिमा होने के बाद, यानी उठाया और स्वर्ग में चढ़ाया गया, आत्मा की उपस्थिति पूरे समय आएगी उनके जीवन में और अधिक। तो मुझे लगता है कि यहाँ यह पाठ वह आपके साथ रहता है और आप में रहेगा उसी से संबंधित है। तब यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं आपके पास आऊंगा। तो पवित्र आत्मा, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण यीशु है, कार्यात्मक रूप से आत्मा के माध्यम से हमारे जीवन में मंत्रालय। तो आत्मा ईसाई है, आत्मा क्रिस्टोसेंट्रिक है। आत्मा के आने का अर्थ है कि यीशु स्वयं आत्मा में उनके पास आ रहे हैं। आथा आत्मा कोई स्वतंत्र एजेंट नहीं है, आत्मा के पास अपना कोई टमटम नहीं है। आत्मा लोगों को वायवीय बनने के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं है, आत्मा लोगों को वायवीय होने के माध्यम से ईसाई बनने के लिए नेतृत्व करने के लिए है। आत्मा उन्हें मसीह के प्रति और अधिक समर्पित बनाने के लिए मौजूद है। हम यहाँ जॉन 14 श्लोक 26 में आत्मा के बारे में कुछ और शिक्षा देखते हैं। यहाँ वह कहते हैं, वकील पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हें हर चीज की याद दिलाएगा, मैंने तुमसे कहा है। तो आत्मा चर्च को शिक्षा देने जा रहा है, आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखाती रहेगी। जाहिर है हमें सभी शब्द पर प्रासंगिक रूप से कुछ सीमाएं रखनी होंगी। मुझे विश्वास नहीं है कि यीशु यह वादा कर रहे हैं कि आत्मा उन्हें कंप्यूटर विज्ञान और खगोल भौतिकी और इस तरह की चीजें सिखाएगा। वह उन्हें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें सिखा रहा है और यीशु का शिष्य कैसे बने, और वह ऐसा तुम्हें वह सब कुछ याद दिलाकर करेगा जो मैंने तुमसे कहा है। इसलिए आत्मा यीशु द्वारा सिखाई गई बातों से निकलकर ऐसी नई बातें सिखाने के लिए नहीं आ रही है जो यीशु के मंत्रालय में भी कभी निहित नहीं थीं। आत्मा उस शिक्षा को जारी रखने के लिए आ रही है जिसे यीशु ने शुरू किया था, और उन्हें यीशु द्वारा कही गई हर बात की याद दिलाती है। इसके अलावा हम यूहन्ना अध्याय 15 श्लोक 26 और 27 को देखते हैं। उस दिन तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगोगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं पिता से पूछूंगा, मुझे क्षमा करें, मैं इसे इस बार सही कर दूंगा। 15:26, उस दिन आप मेरे नाम से पूछेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी ओर से पिता से पूछूंगा। नहीं, पिता आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि मैं तुमसे आया हूं और तुमने भी विश्वास किया है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं जो खोज रहा हूं, यह श्लोक उससे सीधे तौर पर बात नहीं करता, इसलिए मुझे गलत श्लोक मिला। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं कहता हूं कि मैं अध्याय 16 में देख रहा हूं, इसीलिए मैं गलत श्लोक में हूं। मुझे अध्याय 15 छंद 26 और 27 की आवश्यकता है। अब जब मैं सही जगह पर हूं, मुझे आशा है कि आप मेरे साथ हैं। 15:26, जब वह वकील आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्यात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी गवाही देना, क्योंकि तुम आरंभ ही से मेरे साथ रहे हो। यहाँ एक और पाठ है जो हमें दिखाता है कि आने वाली आत्मा ईश्वर की ओर से मसीह केंद्रित आत्मा होगी। उसे सत्य की आत्मा कहा जाता है, और वह जिस सत्य को व्याप्त कर रहा है और सिखा रहा है, वह ईसाई धर्म का सत्य है, कहता है कि वह मेरे बारे में गवाही देगा। अध्याय 16 में चल रहा, निस्संदेह यह बताता है कि आत्मा दुनिया को कैसे दोषी ठहराएगा, और फिर श्लोक 8 में बताए गए आत्मा के दोषी ठहराने वाले कार्य और अनुसरण का संबंध पाप और धार्मिकता और न्याय से है, और निःसंदेह इसका संबंध यीशु के साथ लोगों के रिश्ते से है। इसलिए जॉन 14 से 16 में आत्मा के कार्य को समझने के संदर्भ में भले ही इसे बिल्कुल एक साथ नहीं रखा गया है, मुझे यह स्पष्ट लगता है कि जब यीशु ने उन्हें एक नई आज्ञा देने की बात कही और कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करेंगे, और इसके द्वारा यदि वे एक दूसरे से प्रेम रखते तो जगत विश्वास करता कि वे उसके चेले हैं। यह मेरे लिए स्पष्ट है कि जिस तरह से यीशु उन्हें एक दूसरे से प्यार करने में सक्षम बनाएंगे, जैसा कि उन्होंने उनसे प्यार किया है, वह आत्मा के मंत्रालय के माध्यम से है जो आता है, जो उन्हें यह महसूस करने से रोकता है कि वे अनाथ हो गए हैं और त्याग दिया जाता है, और यह उन्हें फिर परमेश्वर की सेवा करने और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने में सक्षम बनाता है। तो हमने पवित्र आत्मा के बारे में जॉन में अब तक जो कुछ देखा है उसका सारांश देने के लिए और फिर हम वीडियो को समाप्त करने से पहले यह सोचने में एक पल बिताना चाहते हैं कि आत्मा हमें सभी चीजें कैसे सिखाती है। हमने अब तक जॉन में पवित्र आत्मा के बारे में क्या देखा है? हमने देखा है कि यीशु ही वह है जो पिता से आत्मा प्राप्त कर रहा है। यह अध्याय एक में जॉन बैप्टिस्ट के मंत्रालय से है और अध्याय दो में भी बयान है, शायद 6:27 में भी, जहां यीशु कहते हैं कि वह वही है जिस पर पिता ने अपनी मुहर लगाई है। यह वर्णन करने का एक तरीका है आत्मा का कार्य। यहां ऊपरी कमरे में हम यीशु के बारे में विदाई प्रवचन पढ़ रहे हैं। विभिन्न ग्रंथों में पिता और यीशु दोनों के बारे में कुछ अलग अलग तरीकों से बात की गई है, जैसे कि पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आत्मा भेजना, पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के पास भेजे जाने की इस स्थिति में आत्मा यीशु की निरंतर या सतत उपस्थिति के रूप में शिष्यों की सेवा करता है। इसलिए अपने आप को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि जैसे शुरुआती शिष्य चलते थे और यीशु के साथ बात करते थे, यीशु ने जाते समय उनके साथ आत्मा छोड़ दी ताकि चल रहे चर्च का यीशु के साथ एक निरंतर संबंध बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि यीशु ने हमें अपनी उपस्थिति के बिना छोड़ दिया है। ऐसा है कि यीशु ने पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से अपने लोगों के साथ मौजूद रहने के तरीके को बदल दिया है। इसकी आदत डालना एक कठिन बात है और मुझे लगता है कि हम जॉन 16 में शुरुआती शिष्यों की तरह ही ऐसा करेंगे, जहां यीशु ने कहा था, यह आपके लिए समीचीन है कि मैं चला जाऊं। वह लगभग कह रहा है, तुम्हें मेरा जाना जरूरी है, मुझे यहां से निकलना होगा। और यह लगभग अकल्पनीय है कि ऐसा हो सकता है। संभवतः नए नियम में सबसे संज्ञानात्मक रूप से असंगत ग्रंथों में से एक, जहां यीशु अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, जब मैं चला जाऊंगा तो तुम बेहतर हो जाओगे। जाहिर है वह खुद का अपमान नहीं कर रहा है या कह रहा है, मैं वह नहीं रहा हूं जो मुझे आपके साथ रहना चाहिए, लेकिन वह आपसे कह रहा है, जब मैं चला जाऊंगा तो आत्मा आएगी और विश्वव्यापी वैश्विक चर्च को सक्षम बनाना कुछ ऐसा होगा जो यहां फिलिस्तीन में शिष्यों के एक सीमित समूह के साथ मेरी भौतिक उपस्थिति से भी अधिक अद्भुत आशीर्वाद होगा। अंत में आत्मा यीशु के बारे में गवाही देता है और दुनिया को पाप का दोषी ठहराता है। इस बारे में सोचें कि हमारा जीवन और मंत्रालय कितने बेकार होंगे यदि उन्हें आत्मा के कार्य द्वारा बढ़ाया, समर्थित और सशक्त नहीं किया गया। हमारे लिए इस पापी संसार में जीना, परमेश्वर के लिए बोलना और मसीह के लिए बोलना कितना व्यर्थ होता यदि यह तथ्य न होता कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ आत्मा छोड़ी ताकि आत्मा हमारी गवाही को सशक्त बनाए। दिलचस्प बात यह है कि जॉन 15 के अंत में अंतिम पाठ मंत्रालय शिष्यों की गवाही और पवित्र आत्मा की गवाही को एक साथ जोड़ता है। आप गवाही देंगे और आत्मा भी गवाही देगी। क्या यह जानना अच्छा नहीं है कि जैसे चर्च सुसमाचार की गवाही देता है और अपने जीवन और गतिविधियों से और दुनिया को अपने संदेश से, भगवान की पवित्र आत्मा उसका समर्थन कर रही है और उसे सशक्त बना रही है और उसे प्रामाणिक बना रही है और उसे फलदायी बना रही है इस दुनिया में? अंत में जैसे ही हम वीडियो समाप्त करते हैं, बस एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि सीधे तौर पर धर्मशास्त्रीय से थोड़ा अधिक व्यावहारिक है, और प्रश्न यह होगा कि यीशु ने जो वादा किया था कि आत्मा आपको सभी चीजें सिखाएगा, वह कैसे होता है? आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्हें सभी प्रकार की चीजें आत्मा द्वारा दी गई हैं। चर्च जाना और किसी को यह कहते हुए सुनना बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। यह विचार मेरे सामने बाइबल से निकला, या किसी को यह कहते हुए सुनना जब मैं पिछली रात प्रार्थना कर रहा था, यीशु ने मुझे यह सिखाया या यीशु ने मुझे वह बताया। और अब तुम्हें यही करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह करने की जरूरत है। आप कभी कभी उन कुछ चीजों के बारे में आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो लोग कहते हैं, जब उनके पास इस प्रकार की अंतर्दृष्टि होती है कि वे मानते हैं कि उन्हें यीशु से प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि शायद उनसे कहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, अगर यीशु मुझसे कहेंगे तो मैं यह करूंगा, लेकिन मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि यीशु ने आपको बताया है। तो हम कैसे जाने कि यीशु ने किससे क्या और कैसे कहा? इसलिए ऐसे लोग हैं जो मूल रूप से इस श्लोक को यह वादा करते हुए लेते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ सहज रूप से घटित होता है वह ईश्वर की आवाज है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु की आवाज है। जाहिर है इससे चर्च में बड़े पैमाने पर आत्मपरकता और सभी प्रकार के विधर्म और बाकी सभी चीजें पैदा हो सकती हैं। यदि हमारे द्वारा दिए गए किसी कथन को मान्य करने का एकमात्र तरीका यह कहना है कि हमें यह यीशु से मिला है, तो मुझे लगता है कि लोगों को वह सब कुछ करना होगा जो हम कहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने का यह एक बहुत अच्छा तरीका होगा। लेकिन जाहिर है आत्मा क्या कह रहा है इस बारे में हमारी समझ को आधार बनाने का यह पर्याप्त तरीका नहीं है। इसलिए पूरी तरह से अंतर्ज्ञानात्मक प्रकार की चीज मान्य नहीं है। तो शायद हमें इसे उस तरह से सोचना चाहिए जिसे अक्सर रोशनी के रूप में जाना जाता है। हमने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वे प्रबुद्ध हो गए थे, बाइबल का अध्ययन करते समय किसी तरह वे प्रबुद्ध हो गए थे। यह शायद हमारे पहले विकल्प की तुलना में इसे देखने का एक बेहतर तरीका है जो पूरी तरह से सहज है, क्योंकि कम से कम अब हमारे पास कुछ हद तक बाइबल शामिल है, और यह हमेशा एक अच्छी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि जब हम लोग कहते हैं ऐसे काम करने चाहिए या उन बातों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हम बाइबल से जोड़ सकते हैं? तो अगर हम इसे इस तरह से समझते हैं तो यह होगा कि भगवान हमारे दिमाग खोल रहे हैं, शायद उसी तर्ज पर जैसे हमारे प्रभु यीशु ने एमॉस के रास्ते पर शिष्यों के दिमाग को पुराने नियम को समझने के लिए खोला था, समझने के लिए इसकी शिक्षा जैसा कि यह उससे संबंधित थी। तो कम से कम इसके पक्ष में यह विचार है कि यह बाइबल का अध्ययन करने से संबंधित है, और ईश्वर हमें बाइबल को समझने में मदद करता है। या शायद हम इसे बस थोड़ा सा बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि यह हमें इतना रोशन नहीं कर रहा है, या बाइबल को समझने के लिए हमारे दिमाग को नहीं खोल रहा है, बल्कि यह हमारे लिए बाइबल को रोशन कर रहा है कि शक्ति इतनी अधिक नहीं है कि आत्मा के माध्यम से सीधे ईश्वर से निर्देशित हो हम, लेकिन यह पवित्र शास्त्र की शक्ति के माध्यम से भगवान की शक्ति है। धर्मग्रंथ हम पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, न कि हमारे दिमाग खुले होने के कारण, बल्कि धर्मग्रंथ हमारे लिए खुले होने के कारण। इसलिए जोर हम पर नहीं बल्कि बाइबल पर ज्यादा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये दो मध्य दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक बेहतर हैं, लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जिनकी धारणा है कि जॉन 14 से 16 में यह सामग्री हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं है, कि ये वादे केवल तक ही सीमित हैं, वे व्यक्ति जिन्हें वे मूल रूप से दिए गए थे। यीशु यहाँ सीधे तौर पर यह नहीं कहते हैं कि मैं सभी सदियों के दौरान समग्र रूप से चर्च को अपनी शिक्षा के बारे में तत्काल जानकारी दूंगा। यीशु 12 से बात कर रहा था, वह अपने अंतरंग मंडल से बात कर रहा था। मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि वह इस समय 11 से बात कर रहा था, 12 से नहीं, और इसलिए फिर फोकस उन पर है। और जब आप उनके बारे में चर्च के मूलभूत शिक्षकों के रूप में सोचते हैं, और उनसे और उनके सहयोगियों से नए नियम के शास्त्र हमारे पास आते हैं, तो हम शायद ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे जैसा कि यह अंतिम समझ नए नियम के विहित धर्म ग्रंथों पर करती है। वादा तब सीधे 12 से किया गया था, मुझे कहना चाहिए 11 से, और वे वही हैं जिनके माध्यम से भगवान ने उन्हें और उनके करीबी सहयोगियों को शुरुआती दिनों में नए नियम का निर्माण करने के लिए उपयुक्त समझा। तो फिर यह कहना कि आत्मा हमें इस समझ में सभी चीजें सिखाती है, यह कहना होगा कि आत्मा नए नियम का निर्माण करने के लिए प्रेरितिक परंपरा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रारंभिक चर्च का मार्गदर्शन करेगी। तो हमारे पास आत्मा प्रेरित आत्मा निर्मित नए नियम की शिक्षाएं हैं जो हमें सभी चीजें सिखाएंगी। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप इन विकल्पों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे आशा है कि हम सभी कहेंगे कि यह बहुत अस्पष्ट है कि हम केवल आत्मा के माध्यम से ईश्वर की सहज समझ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक मार्गदर्शक, एक वस्तुनिष्ठ मानक और एक प्राधिकरण होना चाहिए जो हमें उन अंतर्ज्ञान संबंधी बयानों को मान्य करने में मदद करे जो जंगली और गलत हैं। जब लोग सोचते हैं कि उन्होंने ईश्वर से कुछ सुना है तो वे हमेशा इसे सही नहीं समझ पाते हैं। अत हमें शास्त्रों की प्रधानता रखनी होगी। तो चाहे आप सोचें कि यह अंतिम दृष्टिकोण सही है या नहीं, यह निश्चित रूप से सबसे सतर्क दृष्टिकोण है। निश्चित रूप से भगवान आज दुनिया में क्या कर रहे हैं इसकी सबसे सुरक्षित समझ है यह कहना कि भगवान नए नियम की अवधि के माध्यम से चर्च को सिखा रहे हैं। और जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो आप अपने आप से उन छापों या अंतर्ज्ञानों या संकेतों के बारे में बात करना शुरू नहीं कर सकते जो आपको ईश्वर से प्राप्त होते हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि यह दोनों और है कि हम शायद धर्म ग्रंथों के माध्यम से भगवान से प्रेरणा प्राप्त करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है, लेकिन बेहतर होगा कि हम बहुत 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 निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि हम जो सहज ज्ञान युक्त बातें सोचते हैं हो सकता है कि हमें ईश्वर से प्राप्त प्रेरणाएं मिली हों। जो संकेत हम महसूस करते हैं वे वास्तव में ईश्वर के हैं, किसी अन्य आत्मा के नहीं, या सिर्फ हमारे अपने अस्तव्यस्त मानस से जहां हम उन चीजों को खोज लेते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे, जिसे कभी कभी कहा जाता है पुष्टि पूर्वाग्रह। तो उम्मीद है कि ये विकल्प हमें समझदारी से विचार करने पर मजबूर करेंगे कि आत्मा के लोग होने का क्या मतलब है। आत्मा के दिमाग के लोग होने के नाते ऐसे लोग बनने के लिए जिनकी सलाह बुद्धिमान है और अन्य लोगों को मसीह की शिक्षा का पालन करने में मदद करने के लिए धर्म ग्रंथ। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह सत्र 16 है, विदाई प्रवचन, एक नई आज्ञा और एक अन्य सहायक। यूहन्ना 13:31 से 14:31।